ధూతనజలధరచైగోవధూటీతిగోరుచౌరాయ తస్మై శ్రీకృష్ణాయ నమః సంసారం వైరుహస్య బీజాయ ప్రజ్ఞానాంశప్రదానై స్థిరచరణికరవ్యాప్తిభిర్వ్యాప్యలోకాన్ భుక్త్వా భోగాన్స్తవిష్టాన్ పునరపి భీషణోద్భాసితానకామజన్యాన్ పీత్వా సర్వాన్ విశేషాన్ స్వపితి మధురం మాయా భోజయన్నో మాయా సంఖ్యాతురీయం పరమమృతమజం బ్రహ్మయత్తన్నతోస్మి శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేదౌ విభాగినే వ్యోమవద్ వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః తస్మై శ్రీ గురవే నమః పురాణం సర్వశాస్త్రాణం ప్రథమం బ్రాహ్మణాస్మృతం ఉత్తమం సర్వలోకానాం సర్వజ్ఞానోపకారకం. सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा फिजी के अध्यक्ष महोदय, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा बार शाखा के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित संगति एवं माता, फिजी देश काफी चिर परिचित है मुझसे। मैं सबसे पहले 1977 में आया था, उस समय सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर महाराज थे। उसके बाद कई लोग आए जिन्होंने अध्यक्षता की, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा हमारी हिंदू संस्कृति संस्कार आचार विचार भाषा वेश इन सब के संरक्षण में भगीरथ प्रयास रत है। ग्रामीण जनता हो चाहे शहर की जनता हो, आबाल वृद्ध अपनी संस्कृति संस्कार, अपने ग्रंथ, अपने देवी देवता, इससे परिचित हों, इसके लिए जो प्रयत्न श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा कर रही है, उसके लिए प्रशंसा की पात्र है, उसका कार्य स्तुत्य है। प्रचारकों का यहाँ आना, हमारे जो मूल ग्रंथ हैं भारतीय संस्कृति के, धर्म के, उनका आधार लेकर के जन सामान्य को उससे परिचित कराने का जो सुअवसर मिलता है, इसमें मुख्य भूमिका सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा को। आज यहाँ आप शिव पुराण की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप अपने अध्यक्ष महोदय से संस्कृति के बारे में, सदाचार के बारे में, कर्तव्य के बारे में आपने सुना, अभी हमने एक श्लोक कहा है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम। पुराण बड़े प्राचीन है, पुरा इति पुराणम, जो सबसे प्राचीन है। वेदों और उपनिषदों की शिक्षा आचार्यों के समीप रह करके, कठिन साधनों में रत रह करके प्राप्त की जाती थी। क्योंकि उनमें छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को प्रमादपूर्ण जीवन से जाना नहीं जा सकता था। वो गूढ़ तत्व, रहस्यपूर्ण तत्व ऋषियों तक सीमित थे, विद्वानों तक सीमित थे। उनको समझने के लिए प्रखर मेधा की आवश्यकता होती थी। वेदों का तत्व समझने के लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक होता था, साहित्य है, छंद है, निरुक्त है। लेकिन उन्हीं गूढ़ तत्वों को धर्म का जो निरूपण वेद में किया गया, उस विधा को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इन पुराणों की रचना ब्रह्मा ने की। पुराण हमारे धर्म के मूल है, लोकोपयोगी है। वेदों में भी विभाग किया गया कर्मकांड, उपासना और दर्शन, जिसको ज्ञानकांड कहते हैं, वेदांत कहते हैं। उन कर्मों की भी मीमांसा अगर मनुष्य करने जाए तो जन सामान्य के लिए वो बोधगम्य नहीं है। उन कर्मों को किन किन लोगों ने अपने जीवन में उतारा, उन कर्मों की प्रतिष्ठा जीवन में किस प्रकार से होनी चाहिए, इसकी गूढ़ व्याख्या उपनिषदों में तो मिलती है। लेकिन चरित्रों के अवतरण के लिए पुराण ही संबल है। और यह निश्चित है हमेशा से कि बौद्धिक वर्गों की संख्या अल्प रही है और जनसामान्य की संख्या अधिक। ऋषि महर्षियों की जो संख्या है अंगुलियों पर गिनी जा सकती थी। इसलिए पुराणों के माध्यम से भक्त के तत्व को, कर्म के तत्व को, सदाचार के तत्व को, धर्म के तत्व को, कहानियों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से, अवतारों के माध्यम से समझाया गया और उसकी व्याख्या दी गई। साधकों के चरित्रों का तमाम चित्रण किया गया है। ध्यान से मन को एकाग्र किया जा सकता है, योग के द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध किया जा सकता है, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। लेकिन इसके लिए सभी लोग समर्थ नहीं हैं। लेकिन बिना चित्तवृत्तियों का निरोध किए मनुष्य कोई काम कर नहीं सकता है। मन का स्थिर होना परमावश्यक है। मनुष्य का भगवत परायण होना परमावश्यक है। मनुष्य का धार्मिक हुए बिना निस्तार नहीं है। अब वो किस प्रकार हो, और आज तो बड़ा मुश्किल है। आज तो आदमी बिल्कुल भौतिक बन करके रह गया। अध्यात्म के प्रति कोई रुचि जैसे नहीं रह गई। वो सोचता है कि अगर कोई निकम्मी चीज है तो वो है अध्यात्म। जो लोग ऐसा समझते हैं कि भौतिक प्रगति से, भौतिक उन्नति से सुख और समृद्धि और शांति, भाईचारे की स्थापना हो सकती है, अगर वो ठीक से विचार करेंगे तो देखेंगे कि भौतिक प्रगति आग में घी का काम करती है। भौतिकता को आत्मसात करने का भी उपाय सीखना पड़ेगा। पहले मनुष्य इच्छाओं के वशवर्ती रहता है, और जो जो इच्छाओं की पूर्ति लेश मात्र होती जाती है, वैसे ही इच्छाएं रक्त बीज के तरीके बढ़ती जाती है। वो पहले ऐसा सोचता है, पहले वो सीमित कल्पना करता है, क्योंकि अधिक की संभावना नहीं होती है उसको। उन इच्छाओं को रोकने की इच्छा नहीं करता है। वो तो कहता है अधिकस्य अधिकम फलम्। इच्छाओं को नियंत्रित करने के उपाय पर वो विचार नहीं करता है। वो सोचता है कि इच्छाओं की पूर्ति से मन शांत हो जाएगा। बुद्धि का विचलन शांत हो जाएगा। इंद्रियों को तुष्ट करना ही वो अपने जीवन का इष्ट समझता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेव हि वर्धते। जैसे अग्नि में घी डालते जाइए, अग्नि में लकड़ी डालते जाइए, ये सोच करके कि अग्नि शांत हो जाएगी, ठीक इसी प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति से जो हम शांति की कल्पना करते हैं वो असंभव है। अब बिना इच्छा किए मनुष्य रह तो सकता नहीं। अगर इच्छा होगी तो क्रिया भी होगी, इच्छा भी हो क्रिया भी हो, लेकिन ज्ञानात्मक हो। अगर ज्ञान को हटा करके इच्छा के अनुसार क्रिया की गई तो उसका उत्तम फल नहीं होगा। मनुष्य समझता तो है कि हम संसार की प्रवृत्तियों में आगे जाकर के वापस लौट सकते हैं, लेकिन प्रवृत्तियां उसे अपने में समाविष्ट कर लेती हैं। ज्ञानात्मक प्रवृत्ति अगर हो तो वो प्रवृत्ति भी धर्म में परिवर्तित हो जाती है। अगर अज्ञानात्मक धर्म हो तो वो प्रवृत्ति परक हो जाता है। हम सोचते हैं कि धर्म कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन सत्कर्म के प्रति अज्ञान, धर्म के प्रति अज्ञान मनुष्य को प्रवृत्ति की ओर खींच करके ले जाता है। अनिच्छन विवार्षणीय बलादि विनियोजते, उसकी इच्छा नहीं होती है, वो सोचता है हम धर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति की तरफ वो खींचा हुआ चला जाता है। उसके मूल में केवल कामात्मक इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं ज्ञानात्मक होनी चाहिए। क्योंकि भोग की भी एक सीमा है, भोग की तरफ प्रवृत्ति तो दिखलाया गया पर उसकी सीमा मनुष्य निश्चित नहीं करता है। उस भोग का परिणाम क्या होता है, निवृत्ति का परिणाम क्या होता है, राग का परिणाम क्या होता है, द्वेष का परिणाम क्या होता है, इनके मूल में क्या है, अगर इसका दार्शनिक विवेचन किया जाए तो सर्वसाधारण के समझ में नहीं आता। इसीलिए वेदांत कुछ लोगों के पास रह गया। उसका कारण यही है कि केवल सोना कोई नहीं खरीदना चाहता, लेकिन अगर जेवर बन जाए उसका तो, और जेवर जब भी बनता है तो उसमें खोट जरूर मिलाया जाता है। उस स्वर्ण की शुद्धि में कुछ न कुछ प्रतिशत कमी आ जाती है, फिर भी लोग उसको खरीदते हैं। उसकी उपयोगिता को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके, उसकी सरलता को देख करके, इसी तरीके से गूढ़ बात वही है, मूल तत्व यही है कि हम अपने आत्म तत्व का बोधन करें, लेकिन वो इतना कठिन है कि सर्वसाधारण का समझ पाना कठिन है, क्योंकि उसके लिए दुस्तर साधनों की आवश्यकता होती है। मन को निगृहित करना पड़ता है, इंद्रियों को निगृहित करना पड़ता है, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, तप चाहिए। अब यहां तो आदमी को एक माला जप करने का भी समय नहीं। बोलते हैं महाराज कोई शॉर्टकट बताओ, एक माला जप के लिए भी वो बोलते हैं, हम काम पर जाते हैं महाराज, ऐसे पैदल जाके जप करते हुए नहीं चले जा सकते, और दूसरे दिन आके पूछते हैं स्वामी जी लॉटरी का नंबर बताओगे। एक माला जप तुम्हारे लिए निरर्थक मालूम पड़ता है। और चाहिए तुमको ऐश्वर्य, तुमको चाहिए भोग, इनसे किसकी तृप्ति हुई है? बनने में कई जन्म लग जाते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गति। उस बनने के लिए जो वेदांत के साधन हैं, जो बड़े कठोर हैं, कठिन हैं, जिनकी साधना के लिए केवल निवृत्ति ही निवृत्ति चाहिए, वो सबके लिए नहीं है। लेकिन आत्मा का बोध, शांति, दुष्प्रवृत्ति से बचना, दुष्पाप से बचना, अशांति से बचना, दुखों से बचना कौन नहीं चाहता? इसके लिए सरल साधनों का और उनकी विवेचना जो शास्त्र सम्मत हो। पुराणों में ऐसी बात नहीं है कि केवल ऐसे ही लिख दिया गया है। वेदान उपबृहणते, वेद के सिद्धांत को ही पटकथाओं के द्वारा, राजवंशों के द्वारा, राजवंशों के चरित्रों के द्वारा, मनवंतरों की कथाओं के द्वारा निरूपण किया गया। आगे आप सुनेंगे कि किस तरीके से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और सरलतया, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा कठिन है। कर्मों की बात को समझना, कर्म इति मीमांसा कहा। कर्म की बात अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो भी नास्तिक हो जाएंगे, वेदांत को ठीक से नहीं समझेंगे तब भी नास्तिक हो जाएंगे। जिन्होंने ठीक से नहीं समझा वो नास्तिक हो गए। मीमांसक भी यही कहते हैं, अच्छा काम करो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करो दुख मिलेगा, बीच में ईश्वर को लाने की जरूरत क्या है? कर्म इति मीमांसका बहुधा बुद्धि प्रमाण पटव करती थी नहीं आई। लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि इसका निर्णय कौन करेगा। इसका निर्णय जड़ तो करेगा नहीं, चेतन ही करेगा, और अगर निर्णायक चेतन है तो उसी का नाम ईश्वर है। वेदों के पढ़ने में भी तमाम प्रक्रियाएं हैं, वेदों के सिद्धांतों में भी बहुत मत है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत का विभिन्न प्रकार से लोगों ने अनुभव किया, जिसका जिस प्रकार का अंतःकरण था उस प्रकार का अनुभव किया। सत एक ही है, अनुभव अलग अलग हुआ, लेकिन उसके पठन पाठन या उसके श्रवण की जो विधि है वो सबके लिए एक ही जैसी है, और वो सबके लिए सर्वजन सुलभ नहीं है। ठीक वही सिद्धांत, वही प्रक्रिया, वही साधन, वही लक्ष्य पुराणों के माध्यम से सर्वजन सुलभ है। इसलिए पुराणों का लक्ष्य है सभी वर्ण मनुष्य मात्र को अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 18 पुराणों में 18 प्रकार के देवताओं का वर्णन है, जिस पुराण को पढ़ो उसमें उसी देवता की विशिष्टता लिखी है, उसी से सृष्टि की उत्पत्ति लिखी है, उसी से सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति लिखी है। ये कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं है। जो आपके माता पिता हैं, साधारण सा उत्तर है इसका, आप समझने की कोशिश करें। आपके माता पिता हैं, आपके सदगुरु देव हैं, इनकी अपनी विशिष्टता है, लेकिन इनके समकक्ष जो दूसरे हैं के अनादर के पात्र हैं, इसलिए अपने इष्ट देव से संबंधित पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। जिस भक्त की जिस देवता में श्रद्धा हो, उस पुराण को समझने से, उस पुराण को सुनने से उसमें ब्रह्मत्व की प्रधानता प्रतीत होती। क्योंकि सत्य की कोई आकृति नहीं है, सत्य से सबकी उत्पत्ति है और सत्य में ही सब विलीन हो जाते हैं, सत्य में भी सब स्थित रहते हैं। इसलिए सत्य की प्रार्थना की गई है, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये तशुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। भगवान वेदव्यास ने जब प्रार्थना की तो सत्य की प्रार्थना की, क्योंकि सत्य साकार भी है और सत्य निराकार है। साकार में भी सत्य की उपासना की जा सकती है और निराकार में भी सत्य की उपासना की जा सकती है। इसलिए सत्य का विरोध कोई नहीं कर सकता, सत्य ही साकार रूप में होता है, अव्यक्त भी व्यक्त होता है। अव्यक्त जब व्यक्त हो जाता है तो उसी को व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति में चेतन न हो, सत्य न हो, तब क्या होगा? सत्य के अभाव के बाद व्यक्ति व्यक्ति कहां रहता है? इसलिए सत्य की किसी भी तरीके से उपासना की जा सकती है। उस सत्य की उपासना के लिए पुराण तमाम प्रकार के कथाओं के द्वारा, पटकथाओं के द्वारा, चरित्रों के द्वारा आविर्भावों के द्वारा हमें शिक्षा देता है। और ये शिक्षा सर्वजन के लिए है, ऐसा नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। आबाल वृद्ध सभी सुन सकते हैं, और उन्हीं गूढ़ रहस्यों को इसमें दर्शाया गया है। शिवपुराण लिखा केवल शिव पुराण सुन ले मनुष्य तो उसके पाप ताप संताप सब दूर हो जाते। घर ही तीर्थ हो जाता है, तीर्थ भूतम ही तदगे ही वासताम पापनाशनम। जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती हो वो स्थान स्थान नहीं होता है, तीर्थ बन जाता है। तरत्यने नेति तीर्थ, जहां बैठ करके मनुष्य पाप से तर जाता है, दोषों से तर जाता है, अशांति से तर जाता है, राग द्वेष से तर जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं। जब हम नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, नहीं, पराया नहीं, नहीं अपना नहीं, पराया नहीं, भगवान तो चिन्ह मात्र है। जब हम भगवान की कहानियों को सुनते हैं, भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, तो उस चरित्रों की चर्चा में मन अनायास ही सध जाता है, बंध जाता है, टिक जाता है, रुक जाता है। और निर्दोष हो जाता है, सबसे बड़ी बात है कि निर्दोष हो जाता है। मन को निर्दोष करने का जो सहज सरल उपाय है वो ये है कि भगवान के चरित्रों की चर्चा सुनी जाए। इन पुराणों के माध्यम से धर्म के प्रति निष्ठा जागृत होती है। इन पुराणों को सुनने के बाद मन में एक आचार संहिता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। पुराणों को सुनने के बाद ये पता चलता है कि नीचे से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति भी अगर अपनी निष्ठा को दृढ़ता से पकड़ के रखता है तो वो ऊंचाई पर फिर उठ सकता है। आगे आप सुनेंगे बहुत से आख्यायिकाएं आप सुनेंगे, हरिश्चंद्र डोम के यहां दिख गए, आपने ये कथा सुनी होगी। इतने नीचे स्तर तक वो चले गए। हम आप यही समझते हैं कि डोम के स्तर तक वो चले गए। शेब्या ने कहा कि अरे हमारा पति तो पतित हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, ये जो कुछ भी हमने स्वीकार किया है धर्म की रक्षा के लिए स्वीकार किया है, पतित तो मनुष्य तब होता है जब धर्म को छोड़ करके किसी चीज को स्वीकार करता है। हमारे जीवन में धर्म सर्वोपरि है, उसकी रक्षा के लिए हमें चाहे जिस अवस्था को भी जाना पड़े, चाहे जिस अवस्था में भी रह करके हमको धर्म का पालन करना पड़े, हमारे मन में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आ सकती। इस समय पुराणों की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बड़ी विचलित है, विचारों की अशुद्धि के अनेकानेक साधन हमारे पास हैं। मनुष्य देखने में तो मनुष्य है, पर अंदर से असुर जैसा होता चला जा रहा है। इसलिए पुराणों का मुख्य विषय है विवेक की शुद्धि, विचार की शुद्धि और असुरत्व का शोधन। इसके महात्म्य आप सुनेंगे, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शुणुवत्स रसायनम काल व्याल महात्रास विध्वंसकरम उत्तमम शैवम पुराणम परमम शिनोक्तो ना पुरामने। इसका निर्वचन ही इसलिए किया गया कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि विवर्धनम, सभी प्रकार के सिद्धांतों को सरलता से जिस प्रकार व्यक्ति समझ सके। सर्व सिद्धांत क्यों कहा? इसीलिए कहा कि किसी की प्रवृत्ति कर्म की ओर होती है, किसी की प्रवृत्ति भक्ति की ओर होती है और किसी की प्रवृत्ति ज्ञान की तरफ होती है। सभी लोग एक प्रकार की प्रवृत्ति के नहीं होते। क्योंकि गुणधर्म अलग अलग होते हैं, कोई सतोगुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है। सतोगुण जो प्रधान होगा उसको रजोगुण कर्म में रुचि नहीं होगी, जो तमोगुण प्रधान होगा उसको रजोगुण की प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगेगी, उसको तमोगुण अच्छा लगेगा। इसलिए जो जिस गुण की प्रधानता से प्रवृत्ति करना चाहता है, उस प्रवृत्ति में सुधार के लिए साधनों का वर्णन किया गया। लेकिन किसी भी प्रकार की बीमारी हो, रसायन शब्द का प्रयोग किया गया, लिखा है कितनी विरम पुरानी बीमारी क्यों न हो, रसायन से दूर हो जाती है। तो ये जो भगवत चर्चा है ये हमारे अंदर भक्ति को पुष्ट करती है। रसायन खाने से जैसे मनुष्य के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती है और विषाणुओं को वो दूर करता है रसायन, इसी तरीके से जो हमारे मन में अनास्था धर्म के प्रति है, इष्ट के प्रति है, साधन के प्रति है, सत्कर्म के प्रति है, दान के प्रति है, श्रद्धा के प्रति है, सत्कार के प्रति है, उसको धीरे 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 रसायन के रूप में वो अश्रद्धा को दूर करके श्रद्धा की स्थापना करता है। कहा इसकी बराबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि और कुछ दूसरा है ही नहीं जो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुखद कर्णप्रिय बातों को सुना करके तुम्हारे हृदय के दोष को दूर कर दे। और उन सिद्धांतों को दृष्टांतों के द्वारा, ऐसा नहीं कि केवल सिद्धांत कह देंगे। अब मैं सिद्धांत कह दूं तो बड़ा मुश्किल होगा कि जो लोग समझते हैं वो तो समझ जाएंगे, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया उनके लिए बड़ा दुरूह हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन उन्हीं सिद्धांतों को अगर हम कहानियों के माध्यम से कहें तो कठिन से कठिन सिद्धांतों को भी आप समझ सकते हैं। वो रसायन का काम कर देगा, वेद भी तीन प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, रोचक, यथार्थ और भयानक। रोचक जो सुनने में अच्छा लगे, स्वर्ग कामो यजेत, अगर स्वर्ग चाहिए तब तो खूब यज्ञ करो। यज धातु का अर्थ ही होता है देव पूजा संगति करण दानेशु, खूब देवताओं का पूजन करो। और देवताओं का पूजन अकेले भी करो और मिलकर के भी करो। संगति करण का मतलब होता है अधिक से अधिक लोगों को साथ लेकर के करो, अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। किसी अच्छे काम को अकेले में मत करो। ऐसा करो कि दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। संगतीकरण, और इससे बड़ा और कोई दान नहीं है कि तुम्हें देख करके कोई अपना चरित्र सुधार ले, तुम्हें देख करके कोई दानी बन जाए, तुम्हें देख करके कोई आचारवान बन जाए। हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सार सार, बड़ी गंभीर और प्रसाद गुण संपन्न बात कही उन्होंने। यज्ञ का मतलब यह भी होता है, क्योंकि जब एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तो संगतीकरण नहीं हो सकता है। आज विकृति क्यों है? सर्वे भक्त मिक्षन्ति कुलं तदावसीदति। भारतीय संस्कृति में लेने की बात नहीं लिखी है, कहीं भी नहीं लिखी है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, बड़ी अच्छी बात लगी, ये संत केवल देते हैं, संत केवल देते हैं, और आपके यहां विकृति जो है वो भी न देने के कारण है, आप देना नहीं चाहते हैं। संत को देखो, इसीलिए लिखा है कि सताम संगो ही भेषजम, संत का साथ छोड़ दोगे डूब मरोगे। नहीं, किले के तरीके, लोहे के तरीके किसी काठ में घुस जाओ, लोहे का छोटा से छोटा टुकड़ा भी पानी में डालोगे वो नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। बड़े से बड़ा भी लोहे का टुकड़ा अगर काठ का साथ हो तैरता रहेगा, पानी की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि उसको डुबा दे। इसलिए अगर साथ हो तो इसका सताम संगो ही थी सजग, संतों का साथ हो। उस साथ से क्या होगा? उस साथ से एक चीज तुम सीखोगे कि देना चाहिए। क्योंकि लेने में सिवाय दुख के सुख कभी नहीं हुआ है, लेने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, और देने वाले को कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। संग्रह संग्रह संग्रह, उसका परिणाम देखिए। इन कर्मों का जो महावन है वो जब तक ज्ञान की अग्नि नहीं लगेगी तब तक जल नहीं सकता है, और जब तक ये महावन जलेगा नहीं तब तक तुम भटकते रहोगे। ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। वो ज्ञानाग्नि घर्षण से होगी, जब सुनने को कुछ मिलेगा तब। जब हम सुनते हैं तो देते हैं, जब दान की बात हम सुनेंगे नहीं तो देंगे कहां से? लगता है कि सब गठिया के ले जाएंगे। जो मर गए वो बेवकूफ थे, नहीं ले जा सके, अपने लोग तो लेके ही जाएंगे, हर आदमी यही सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारी संस्कृति की महानता यही है, हमारे धर्म में केवल देने की बात लिखी है, संग्रह की बात लिखी ही नहीं। दो, दीयताम दीयताम दानम और दानात गतिरिदृशे ही। हमारे यहां तो भिक्षा मांगने वाला भी कहता है, उपदेश करता है। हमारे यहां हम अगर उपदेश करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। महाभारत में एक प्रसंग है कि युधिष्ठिर के साथ भगवान कहीं जा रहे, एक भीख मांगने वाला था, भिक्षा करने वाला। बाबू देव बाबू देव बाबू देव, अरे देव किसी भी तरीके से दो। वेद में भी लिखा है हृया दया श्रिया दया लज्जया दया। लज्जा से भी दो, दस आदमी दे रहे हैं तो तुम भी दो। अगर इतनी लज्जा तुम्हारे पास है तब भी तुम धार्मिक हो गए, स्वयं दे दे तो क्या बात। श्रेय की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो दान करता है। इस संसार से जाने के पहले इस संसार को छोड़ दो। और वही छोड़ सकता है जिसको तत्व बोध हो जाए। अब तत्व बोध कहां होगा? सत्संग करो, शतशास्त्र का अध्ययन करो, अच्छे लोगों का साथ करो, तब ईश्वर में उपादेय बुद्धि हो जाएगी और संसार में हेय बुद्धि हो जाएगी। ये दोनों बुद्धियां होनी चाहिए, ही उपादेय बुद्धि होनी चाहिए। उसने कहा दे दो, जो दे दोगे वो तुम्हारा होगा और जो बैंक में रख के मर जाओगे उसका वो तो दाम तो हो ही गया लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर ने कहा देखो ये क्या शिक्षा दे रहा है, ये मांगता है भीख और शिक्षा देता है। भगवान ने कहा भाई ये शिक्षा दे रहा है, बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहा है, पूछो इससे क्यों ऐसा कह रहा है, ये जोर देकर के क्यों कह रहा है दो दो दो। युधिष्ठिर ने पूछा भाई तुम जोर देके क्यों कहते हो, हमारी मर्जी आए देंगे, हमारी मर्जी आए तो नहीं देंगे। नहीं, उसने कहा नहीं हम जोर देके इसलिए कह रहे हैं कि ओ दानात गतिरिदृशे ही, मैंने नहीं दिया है मैं भीख मांग रहा हूं। और भीख मांगना कितना कठिन होता है, दरिद्रता कितनी कठिन होती है, अपमान कितना कठिन होता है। हे युधिष्ठिर इसीलिए दो। ये कड़वाहट का रस हमने चीखा है, हम चीख रहे हैं, इसलिए जो दोगे वही मिलेगा। श्रीमान श्रीमताम के ही योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम। श्रीमान श्रीमताम के ही योग भ्रष्टो भी जायते, श्रीमान होना चाहते, श्रीमंत के घर में पैदा होना चाहते, अच्छे घर में पैदा होना चाहते, अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा मन चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए, तो वो आज अभी इसी समय बनाना पड़ेगा, मरने के बाद कोई चांस नहीं। अभी पश्चाताप कर लो, अभी ऐसा मत सोचो आप। अच्छी बातों के लिए भी पुण्य चाहिए, जन्मांतर भवेद पुण्यम, महत्तस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् भक्तः महाभाग्यवतो मुनेः। सत्संग में सत्पुरुषों का साथ, तीर्थ में व्रत में दान में प्रवृत्ति तब होती है जब पूर्व जन्मार्जित पुण्य होते हैं। सबकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, संग से भी होता है ऐसा। प्रवृत्ति कराओ आप, कोई आपका साथी है ना जबरी पकड़ के ले आओ, अनजाने में भी सुनेगा तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। सुनने के बाद पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, सुनने के बाद ही राग और वैराग्य का पता चलता है। इन सात संहिताओं में इसी की चर्चा की गई है, सात प्रकार की भूमिकाओं का वर्णन। वैसे तो पुराण 1 कोटि श्लोक थे, लोग ऐसा मानते हैं कि पुराणों की रचना वेद व्यास ने की, ऐसा नहीं। विद्यादिदि व्यास जो विवेचन कर दे, अलग अलग कर दे, उसको कहते हैं व्यास। तो व्यास को मालूम था, वो ऋषि थे, भविष्य दृष्टा थे, कि अल्पमति मनुष्य इन करोड़ों श्लोकों का अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने छोटा छोटा करके 18 पुराण बना दिए। उन्होंने विद्यास किया, इसकी रचना नहीं की। ये तो बड़े प्राचीन है, व्यास से भी पहले के हैं। व्यास तो अभी 5000 वर्ष पहले। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं, विद्यसुर संहिता, रुद्र शतरुद्री, कोटि रुद्र, उमा, कैलाश, वायु, ये 7 संहिताएं। सत्संग, उपासना, कर्मकांड, ज्ञान, इन सभी की प्राप्ति या इन सब में प्रवेश इस कथा श्रवण का फल है। अब महात्मा बताए कि भाई कौन कौन शुद्ध हुए हैं इसको सुनने से, 2 कथाएं इसमें आती हैं। पाप कृतो दुराचारक रता खलाहा, दुराचार में जो रत है, पापात्मा है, जो सोचता ही नहीं कि उपकार क्या चीज है। उनकी शुद्धि कैसे हो सकती है? तो कहा ये सभी शुद्ध हो जाते हैं, सतिष्ठ, सत्य विरत, पितृदोही, दंभी, हिंसक, आश्रमहीन, ये सभी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। महात्म्य आया है कि ज्ञान साल दूर नाम का एक ब्राह्मण था, उसका नाम था देवराज। अधर्मरत था, अधर्म से धन संग्रह करता था, स्नान करने गया, और वह वेश्या से संबंध हो गया उसका। सबको लूट लूट करके ले जा करके सारा धन उसको दे दिया। किसी तरीके वो प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी को कहते हैं। वहां जाकर के वो बीमार पड़ गया और वही शिवालय था, वही रहने लगा, और रह करके उसने शिव की कथा सुनी। सुनना तो नहीं चाहता था लेकिन बीमार पड़ गया, तब क्या करे। और कथा सुनते सुनते ही उसका शरीर शांत हो। शरीर जब शांत हो गया तो शिव के दूतों ने उसको उठाया और ले चले। यमदूतों ने देखा कि मेरे सिवा और कौन ये आ गया जो हमारा कार्य संपादन कर रहा है। जब यम के गण वहां पहुंचे हैं तो शिव के दूतों ने उनको मार भगाया। यमदूतों ने देखा कि शिव की आकृति में, वेशभूषा में, उन्होंने आकर के यमराज से कहा। यमराज ध्यानस्थ होकर के देख रहे हैं कि ये जीवात्मा तो अंतिम क्षण में ज्यो ज्यो पुराण सुनता गया उसी प्रकार से उसकी वैराग्य की वृत्ति होती गई। और जब शरीर छोड़ने का समय आया तब इतनी तीव्र पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हुई कि उसके जितने भी पाप थे वो भस्म हो गए। ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा, एक सिद्धांत ये भी है। तीव्र वैराग्य अगर हो जाता है तो उस तीव्र वैराग्य से सारे बंधन भस्म हो जाते हैं, वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। देख ईश्वर ही उसको बोध कर देता है। उस कथा श्रवण का परिपाक हुआ कि उसको शिव सामित्य मिल गया। ये अतिशयोक्ति नहीं है। एक तो शिव गणों का सानिध्य, दूसरे कथा श्रवण का फल, तीसरे उत्पन्न उससे जो वैराग्य, उससे जो प्रज्वलित वृत्ति और राग का समाप्त हो जाना, ये सब उसके जीवन के लिए साधन बन गए। इस प्रकार दूसरी भी कथा आती है, उपाख्यान है वो, बिंदुक की कथा आती है। बिंदुक भी बड़ा अधर्मात्मा था। उस ग्राम में सारे के सारे पतित थे, पूरा ग्राम ही ऐसा था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। पत्नी के रहते भी वो आचार भ्रष्ट था। जो भी संपत्ति होती थी, जो भी धन होता था, वो वेश्याजामी हो गया था, ले जाकर के दे देता था। काल विशेष परिस्थिति में चंचुला भी पतित गामिनी हो गई। जब उसने देखा कि नहीं, केवल मैं ही नहीं हूं, पत्नी भी पतित हो गई, उसको मारा पीटा समझाया। उसने कहा तू भी पतित, हम भी पतित, तू धन ला के दे मेरे को। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, थोड़े से में हम बता देते। अंत में शरीर उसका छूट जाता है। ये तीर्थ के लिए चली जाती है, गोकर्ण में जाकर के स्नान करती है। और वहां एक जगह कथा हो रही थी, शिवपुराण के बैठ करके सुनने लगी है। किस प्रकार से यम के दूत व्यक्ति को कष्ट देते हैं, किस पाप का क्या फल होता है, इसको सुन करके उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। बहुत भयभीत हो गई कि हमने अपने जीवन में सब पाप ही पाप किए हैं। बाद में जाकर के ब्राह्मण से मिली है और उसने पूछा है कि भाई हमने ये सारे पाप किए हैं, बताओ मेरा कोई निस्तार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि और तुम क्या कर सकती हो, पुराणों की कथा को सुनो। और उन पुराणों की कथा सुनी, शिव पुराण की कथा सुनी, उसके अंदर जो पश्चाताप हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद ये मैंने क्या किया, मनुष्य का जीवन तो हमने जिया नहीं, हम तो पशु का जीवन जिए। आहार निद्रा भय मैथुनम जो सामान्य वेतद पशु फिर नाराणाम, भगवान का भजन किया नहीं, सदाचार किया नहीं, परोपकार किया नहीं, दूसरे के सुख की बात सोची नहीं, देने की बात नहीं सोची, केवल संग्रह की बात सोची, ये क्या किया मैंने। इस पश्चाताप ने उसके अंतःकरण की पवित्रता का साधन जुटा दिया और शिवलोक को प्राप्त हुई। वहां मां जगदम्बा की सेवा में रही, समय पाकर के उसने मां से निवेदन किया कि मैं तो यहां शिवलोक में आ गई हूं लेकिन मेरा पति बड़ा भटक रहा है, तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। मां उसकी सेवा से प्रसन्न थी। उन्होंने तुमरू को बुला करके कहा भाई जाओ उसको उपदेश करो, तो उन्होंने आकर के उपदेश किया है। इस प्रकार से वो पाशाच वृत्त से मुक्त हुआ है। पीटोपि सुमनस संगात आरोहति सताम शिर, संग एक बहुत बड़ी चीज है। संगात संजायते कामह कामाद क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोह, अच्छे संग से मनुष्य देवत्व की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेता है, अजरत अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है, और अगर संग खराब हो गया तो फिर 84 लाख तो है ही है उसके लिए। इस प्रकार अगर संग अच्छे हो जाएं, जिस भी अवस्था में जिस काल में मनुष्य को अच्छा संग मिल जाए तो उसके प्राक्तन जो अच्छे संस्कार हैं वो भी उसकी सहायता करने लग जाता है।